अरमान सिंघानिया ने रश्मि की ओर देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को रेपिस्ट कहने की? लगता है डॉक्टर रश्मि, तुम्हें इस वक्त अपनी जान प्यारी नहीं है। डॉक्टर रश्मि लगभग चीखते हुए बोली, नहीं है मुझे अपनी जान प्यारी। तुम आस्था के साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरमान सिंघानिया और मैं एक बार नहीं, तुम्हें 100 बार बोलूंगी, तुम रेपिस्ट हो, रेपिस्ट, रेपिस्ट, रेपिस्ट। रश्मि ने लगातार अपने जुनून में अरमान को ये कहा। अरमान का ऑरा बेहद खतरनाक हो चुका था। उसने अपने हाथों को अपने सर पर टेप किया और अचानक रश्मि की गर्दन पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया। अरमान ने रश्मि की गर्दन बड़े ही जोरों से पकड़ी थी। रश्मि की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसके पूरे चेहरे पर मानो खून जमा हो चुका था। पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था मानो रश्मि के पूरे चेहरे में खून उतर आया हो। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर अरमान का हाथ पकड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि आकाश मल्होत्रा था। आकाश को पहले ही शक हो चुका था। जिस तरह से रश्मि नफरत और दुर्भावना के साथ अरमान को देख रही थी, वो समझ चुका था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। और जैसे ही वो इस कमरे में चेक करने आया और उसने अरमान को इस तरह से रश्मि का गला दबाते हुए देखा, तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया और फटाफट से उसने पहले रश्मि की जान बचाई। आकाश से इस तरह अपना हाथ छुड़ाए जाने पर अरमान गुस्से से आकाश की ओर देखते हुए खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश इस तरह से इसे बचाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया के साथ इस तरह बात करने की और मुझे रेपिस्ट कहने की? अरमान ने आकाश के सामने रेपिस्ट वाली बात बोली। आकाश की आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से रश्मि की ओर देखा। वो उसके पास जाकर खड़ा हुआ। लेकिन अब जैसे ही आकाश ने ये सुना कि रश्मि ने अरमान को रेपिस्ट कहा है, तो वो पूरी तरह से शॉक में था। रश्मि उस वक्त सांस लेने की कोशिश कर रही थी। आकाश उसके पास गया, उसे बैठाकर पानी पिलाया, उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अरमान ये क्या कह रही है? अरमान ये तुम्हें रेपिस्ट क्यों कह रही है? वहीं आकाश को इस तरह रश्मि के कमरे में जाते हुए देखकर बाकी सब भी हैरान थे, तो एक एक करके वे सब भी वहां आकाश के पीछे जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां गए और आकाश की बात सुनकर रश्मि ने अरमान को रेपिस्ट बोला है, वो सब ये बात सुन चुके थे और सभी हैरत के मारे एक जगह खड़े रह गए थे। ऐसे लगने लगा था मानो सब पूरी तरह से जम गए हों। दादाजी की तो आंखों में खून उतर आया था। तभी आकाश जो रश्मि से सवाल कर रहा था, तब रश्मि उस पर चिल्लाकर बोली, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये इंसान रेपिस्ट है। इसने जानवरों से भी ज्यादा बदतर उस बच्ची के साथ सलूक किया है। अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? ये इसकी बीवी है, तो फिर उसने उसके साथ ऐसी घटिया हरकत क्यों की? उसके पूरे जिस्म में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसके काटने के, इसके हवस के निशान मौजूद ना हों, और इसी वजह से शायद वो लड़की बेहोश हुई थी। जैसे ही रश्मि ने गुस्से से चिल्लाकर आकाश से ये सारी बातें बोली, दादाजी एक तरफ झुकते हुए चले गए। भले ही अरमान ने आस्था का रेप नहीं किया था, लेकिन उसने 10 से 15 मिनट में ही उसकी हालत बद से बदतर कर दी थी। अरमान की नज़र जैसे ही दादाजी और बाकी सब पर बड़ी, तो वो बिना किसी इमोशन के सुलगती सी नज़रों से रश्मि को देखता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन तभी दादाजी के पास जाकर एक पल को वो रुका और दादाजी लाल सुर्ख आंखों से उसकी ओर देखने लगे। दादाजी की आंखों में उस वक्त आंसू को देखकर अरमान अंदर तक हिल गया। अरमान को अच्छी तरह से याद था कि उसने आज तक अपने दादाजी की आंखों में कभी कोई आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज दादाजी की आंखों में आंसू देखकर अरमान को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना दादाजी की कोई बात सुने वो जल्दी ही लंबे लंबे कदम भरता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया और अपनी कार लेकर अकेला ही फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। अरमान के जाने के बाद ध्रुव रश्मि के पास आया और बोला, रश्मि दीदी क्या मैं एक बार आस्था को चेक कर सकता हूँ? तभी रश्मि खड़े होते हुए बोली, नहीं ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो और एक बेस्ट सर्जन हो, लेकिन इस वक्त आस्था की जो हालत है तुम उसे नहीं देख पाओगे और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। रश्मि की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर झुका लिया। उस वक्त उन सबके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे। तब रश्मि दिलासा देते हुए बोली, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने अपने कमरे में चले जाना चाहिए। मैं यहाँ हूँ आस्था के साथ और जैसे ही उसे होश आ जाएगा तब उसके बाद ही मैं उसकी क्या कंडीशन है तभी मैं आप लोगों को कुछ भी बता पाऊंगी। क्योंकि रश्मि ने जिस जगह बेड पर आस्था को लेटाया हुआ था उसने वहां पर एक बड़ा सा पर्दा कर रखा था जिससे आस्था की ओर कोई देख ना सके, क्योंकि उसने उसके पूरे शरीर पर ऑइंटमेंट लगाया था तो उसने काफी कम मात्रा में उसे कपड़े पहनाए थे। रश्मि की बात मानकर जल्द ही सब वहां से जाने लगे। आहान ने दादाजी को थाम रखा था। ध्रुव, आहान, सुमित ने दादाजी को वहां से लेकर चले गए और आकाश रश्मि को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रश्मि के गले पर लाल और नीले निशान हो गए थे। साथ ही साथ अरमान ने अभी उसका गला दबाया था जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर अरमान की उंगलियों के निशान थे। आकाश को अपनी ओर इस तरह से तरस खाता हुआ सा देख रश्मि आकाश की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस्टर आकाश आप भी जा सकते हैं, आपको यहाँ मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि देख चुकी थी कि आकाश को उसके जख्मों को लेकर बुरा लग रहा है, लेकिन रश्मि की ये बात आकाश को चुभ गई थी, इसीलिए वो रश्मि के करीब गया, उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ बैठा दिया। जब रश्मि ने उठने की कोशिश की, आकाश बेरुखी से बोला, चुपचाप करके यहीं बैठी रहो। आकाश ने जल्दी ही पास में रखा हुआ ऑइंटमेंट उठाया और रश्मि की गर्दन पर लगाने लगा। उस वक्त आकाश और रश्मि एक दूसरे के बेहद करीब थे। रश्मि बड़े ही प्यार से आकाश को देख रही थी, लेकिन आकाश ने जिस तरह से उससे बातें की थी वो बातें भी वो भूली नहीं थी। जल्दी ही उसने आकाश का हाथ झटक दिया और झटके से खड़ी होकर बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की या तुम्हारी केयर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अकेली रही हूँ शुरू से लेकर आज तक। अपनी जिंदगी को अकेले ही काटा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी जिंदगी के सफर में किसी के साथ की जरूरत है, समझे तुम। गुस्से से उठकर रश्मि पर्दे के ठीक पीछे जहां पर आस्था लेटी हुई थी वहां चली गई, और आकाश ने हाथ में जो ऑइंटमेंट पकड़ रखा था उसने वो वहीं गुस्से से फेंक दिया और सीधा उसे कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो रश्मि के इतने करीब क्यों चला गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि रश्मि को दर्द में आखिरकार क्यों नहीं देख पाया। वो वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर अपने तहखाने में पहुंच चुका था, और वहां जाकर एक बार फिर उसने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। आज उसने और दिन से ज्यादा खुद को तकलीफ दी थी। इतना ही नहीं, अरमान का पूरा जिस्म खून से भर चुका था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने आस्था का मासूम चेहरा आ रहा था। उसने आस्था पर किस तरह से इल्जाम लगाए। पहले तो अरमान को इस बात का शक था कि आस्था वीर रायचंद से मिली हुई है, लेकिन फिर जब उसका ये शक दूर हुआ तो उसे लगा कि आस्था पैसों की लालची है और वो पैसों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो गलतफहमी भी दादाजी ने उसकी दूर कर दी थी। अब तो अरमान बड़े ही जुनून के साथ खुद को तकलीफ दे रहा था और अचानक अपने आप को तकलीफ देता हुआ जोरों से हंसने लगा था। उस वक्त अरमान बड़ा ही क्रूर और खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक अलग ही तूफान समेटे हुए ये इंसान उस वक्त खड़ा हुआ खुद को तकलीफ दे रहा हो।
तब अरमान बड़े ही सनकी से अंदाज में बोला, तुम्हें अरमान सिंघानिया ने छुआ है, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। आज के बाद अरमान सिंघानिया तुम पर किसी तरह कोई शक नहीं करेगा, लेकिन 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 जिसने भी अब तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की और तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखा, तो अरमान सिंघानिया उसका वो हाल करेगा कि उसे अपने जन्म लेने पर भी अफसोस होगा। कहीं न कहीं ये सब कहते हुए अरमान सिंघानिया बड़ा ही सनकी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आस्था के साथ उसका एक गहरा और मजबूत लगाव जुड़ चुका था, जो कि आस्था के लिए बेहद समस्या पैदा करने वाला था। अरमान का दर्द काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसने लाल रंग का बटन प्रेस करते ही वो जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। जल्द ही एक बार फिर डेविल किंग के डॉक्टर वहां मौजूद थे, लेकिन आज अरमान की हालात बद से बदतर थी। इतना ही नहीं, उसकी जान तक पर बनाई थी। उसने आज खुद को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ दी थी। डॉक्टर्स के लिए अरमान का खून रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी और अरमान का इलाज अच्छी तरह से किया था। जल्द ही अरमान की डॉक्टर्स की टीम ने उसे अच्छी तरह से इलाज देने के बाद तहखाने में पड़े एक बेड पर लिटा दिया और साथ ही साथ अरमान के बॉडीगार्ड से बोल दिया, इन्हें कम से कम 3 दिन तक यहीं रहना होगा, उसके बाद ही ये शायद चलने फिरने के लायक हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से अभी ये चल फिर नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं सारे गार्ड्स अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे, क्योंकि इस वक्त अरमान सिंघानिया द डेविल किंग घायल था और घायल अवस्था में अपने फार्म हाउस में लेटा हुआ था। वहीं दूसरी ओर 1 से 2 घंटे के अंदर आस्था को होश आ गया था। आस्था ने जैसे ही अपने आप को देखा और ये देखा कि इस वक्त वो रश्मि के कमरे में है, तो उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली। जो कुछ भी उस वक्त आस्था के साथ हुआ था एक एक करके आस्था को याद आने लगा और एक बार फिर उसकी आंखों से मूसलाधार आंसू बह निकले। तब आस्था थोड़ी देर तक रोने के बाद खुद को शांत करते हुए मन ही मन में बोली, नहीं आस्था नहीं, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती हो। वैसे भी उस राक्षस ने भले ही तुम्हें छूने की कोशिश की है, पर उसने अपनी हद पार नहीं की है। बस अब तुम्हें अपनी इज्जत बचाकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें मरना नहीं है आस्था, नहीं, तुम टूट नहीं सकती हो। ना तुम्हें टूटने का अधिकार है और ना ही मरने का अधिकार है। तुम्हें अपना इकलौता सपना पूरा करना है और अपनी नानी माँ का ख्याल रखना है। तुम हार नहीं मान सकती आस्था, हार नहीं मान सकती। खुद से ऐसा बोलकर आस्था मन ही मन में खुद से ही सवाल जवाब करने लगी थी। आस्था ने ठान लिया था कि जब तक वो यहाँ है वो अरमान सिंघानिया की शक्ल तक नहीं देखेगी और जितना हो सकेगा उससे दूर रहेगी। जल्द ही आस्था की नज़र अपने ठीक बराबर में सोफे पर बैठी हुई रश्मि पर गई, जो आंखें बंद किए हुए शायद सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को वाकई गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लगभग उसकी जान जाने ही वाली थी। ऐन मौके पर आकर आकाश ने डॉक्टर रश्मि को अरमान से बचाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक दर्द में थी, इसीलिए उसने एक पेन किलर खा लिया था, जिसकी वजह से उसे अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। तब आस्था उठी और उठकर धीरे से चलते हुए डॉक्टर रश्मि के पास जाने लगी, लेकिन वो 1 से 2 कदम ही चली थी कि अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए और साथ ही साथ साइड में रखा हुआ ग्लास भी नीचे गिर गया। ग्लास गिरने पर डॉक्टर रश्मि की आंखें खुली, उसने आस्था को इस तरह से देखा तो वो तुरंत दौड़कर उसके पास आई और आस्था को संभालते हुए बोली,
ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तुम्हें बेड से नहीं उठना चाहिए आस्था। इस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। ऐसा बोलकर डॉक्टर रश्मि ने आस्था को बेड पर फिर से लिटा दिया। वहीं आस्था बेड पर बैठने के बाद रश्मि का हाथ पकड़कर बोली, रश्मि दीदी हमें क्या हुआ है? पहले तो हमें इतनी कमजोरी कभी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज तो हमसे एक कदम तक नहीं रखा जा रहा है। क्या हुआ है हमें? आस्था की बातें सुनकर रश्मि का गला भर आया और अगले ही पल उसने आस्था के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम 4 से 5 घंटे तक फुल साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई है और तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें कुछ विटामिन और ताकत की दवाइयों के साथ साथ इंजेक्शन वगैरह भी दिए हैं। उनसे तुम कुछ घंटे में काफी बेहतर हो जाओगी और तुम्हारे शरीर पर जो निशान है मैंने उन पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया है, वो जख्म भी शाम तक हल्के हो जाएंगे। ये बातें कहते हुए डॉक्टर रश्मि अपनी आंखें चुरा रही थी। दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।